ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। भोटेकोशी बाढ़ से प्रभावित नागरिकों को राज्य के साथ और भरोसे की जरूरत। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल का कथन। जलवायु न्याय सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से किया आह्वान। जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में खोज और बचाव अभियान जारी रहेगा, नेपाली सेना का कथन। नागरिकों को राज्य की मौजूदगी की कमी महसूस न हो, इस तरह राहत बचाव और पुनर्वास का काम आगे बढ़ाने का तीनों स्तर के सरकारों से सभामुख टोल प्रसाद अरियाल का आग्रह। और बांग्लादेश में तेजी से बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप, अब तक 117 लोगों की हो चुकी है मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने कहा है कि भोटेकोशी बाढ़ से प्रभावित लोगों को इस कठिन समय में राज्य के साथ और भरोसे की जरूरत है। उन्होंने पीड़ितों की शिकायतों को समस्या समाधान के संकेत के रूप में लेने का आग्रह किया। रसुआ और नुआकोट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलगत निरीक्षण करने के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति पोडेल ने ये बात कही। उन्होंने प्रभावितों के उद्धार, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण को प्रभावी बनाने तथा बच्चों, बुजुर्गों और अन्य जोखिम वाले लोगों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। राष्ट्रपति ने कहा कि ये दोषारोपण और राजनीतिक टकराव का नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता, पुनर्निर्माण और आर्थिक पुनरुत्थान का समय है। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये अपील भी की कि वे जलवायु न्याय को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएं। रसुआ की भोटेकोशी बाढ़ में अब तक 1356 शव बरामद हुए हैं। इनमें से 1114 शवों का अस्थायी प्रबंधन किया जा चुका है, जबकि डीएनए पहचान के लिए 2570 नमूने लिए गए हैं। अब तक 98 शवों की पहचान कर परिजनों को सौंपा गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, खोज और बचाव के लिए 7912 पुलिसकर्मी तैनात हैं। वहीं अब तक 13396 लोगों का उद्धार किया गया है, जिनमें 3533 लोग रसुआ, नुआकोट और धादिंग के 39 होल्डिंग सेंटरों में रह रहे हैं। बाढ़ के बाद घायल और प्रभावित 6672 लोगों ने उपचार सेवा ली है। विभिन्न अस्पतालों में भर्ती 323 लोगों में से 228 को छुट्टी दी जा चुकी है। वहीं 4077 लापता लोगों की तलाश जारी है। रसुआ की भोटेकोशी बाढ़ में 34 देशों के 587 विदेशी पर्यटकों के लापता होने की जानकारी पर्यटन विभाग ने दी है। इनमें 256 पुरुष, 329 महिलाएं और 2 अन्य हैं। सबसे ज्यादा भारत के 184 पर्यटक लापता हैं। लापता विदेशी पर्यटकों में भारत के 184, अमेरिका के 67, मलेशिया के 55, यूक्रेन के 54, लातविया के 33, ऑस्ट्रेलिया के 33, ब्रिटेन के 32, कनाडा के 33, चीन के 26, सिंगापुर के 9, जर्मनी के 8, रूस के 8, दक्षिण अफ्रीका के 6, न्यूजीलैंड के 5, जापान के 5, फ्रांस के 4, कजाकिस्तान के 3, बेलारूस, आयरलैंड, नीदरलैंड और पुर्तगाल, स्पेन और बेल्जियम के 2-2, फिनलैंड, हंगरी, इजराइल, लिथुआनिया, फिलीपींस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इटली, वियतनाम और एस्टोनिया के 1-1 और पोलैंड के 2 शामिल हैं। इसके अलावा बाढ़ में 188 नेपाली पर्यटक भी लापता हुए हैं। अब तक 307 विदेशी पर्यटकों का उद्धार किया जा चुका है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
फोनमा कुरा गर्दा आवाज स्पष्ट नआएर दिक्क लाग्छ?
अब अनुभव गर्नुहोस् नेपाल टेलिकम 4G भोल्टेज।
भोल्टे भोइस ओभर एलटी। अब तपाईँको हरेक कुराकानी अझ स्पष्ट, अझै जीवन्त।
एचडी भोइस क्वालिटीसँग कम ब्याकग्राउन्ड नोइज र अल्ट्रा क्लियर आवाज।
यस्तो अनुभव मानव तपाईँले कुरा गरिरहनु भएको व्यक्ति तपाईँको छेउमै हुनुहुन्छ।
र अझ रमाइलो कुरा,
फोनमा कुरा गर्दै गर्दा पनि चलाइरहनुहोस् 4G स्पीड इन्टरनेट।
क्लियर कल्स र फास्ट इन्टरनेट एकै साथ।
सेवा सुचारू गर्न आफ्नो फोनमा #444 #डायल गर्नुहोस्।
4G बोल्टे नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। सभामुख टोल प्रसाद अरियाल ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसी भी नागरिक को राज्य की मौजूदगी के अभाव का एहसास न होने देने के लिए बचाव, राहत और पुनर्वास के काम तेजी से आगे बढ़ाने का तीनों स्तर की सरकारों से आग्रह किया है। धादिंग के गलछी स्थित भोटेकोशी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि आपदा के समय नागरिकों को सरकार की मौजूदगी का एहसास कराना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विस्थापित परिवारों के लिए जल्द से जल्द सुरक्षित आवास की व्यवस्था की जाए और राहत वितरण को न्यायसंगत और व्यवस्थित बनाने के लिए संघ प्रदेश और स्थानीय सरकारों के बीच समन्वय जरूरी है। सभामुख अर्याल ने वास्तविक पीड़ितों की पहचान कर सभी प्रभावित परिवारों को समान रूप से राहत उपलब्ध कराने तथा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर मानवीय भौतिक कृषि व्यापार और आजीविका के नुकसान का वास्तविक विवरण जुटाने का भी आग्रह किया। उन्होंने जोखिम वाली बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने और भविष्य के जोखिम को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन पुनर्निर्माण की नीति और मापदंड तैयार करने पर भी जोर दिया। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने से अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने टेलीफोन पर बातचीत की है। रासोपा के मुताबिक आज सुबह हुई बातचीत के दौरान विदेश मंत्री रूबियो ने भोटेकोशी बाढ़ में लोगों की मौत पर गहरा दुख जताते हुए नेपाल सरकार और नेपाली जनता के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। जवाब में लामिछाना ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में खोज बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल सरकार सभी उपलब्ध संसाधन जुटा रही है। उन्होंने कहा कि नेपाल में रह रहे विदेशी नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी सरकार समान रूप से प्रतिबद्ध है। लामिछाने ने अमेरिकी सहयोग और एकजुटता के लिए धन्यवाद दिया। वहीं रूबियो ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका नेपाल को अतिरिक्त सहायता देने के लिए तैयार है। रसुआ की भोटेकोशी नदी में 10 भाद्र को आई बाढ़ समेत देशभर में बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों की स्मृति में पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में दीप प्रज्वलित किया गया था। पशुपति क्षेत्र विकास कोष की ओर से आयोजित दीप प्रज्वलन में दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। इस दौरान आपदा में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने और लापता लोगों का जल्द पता चलने की कामना भी की गई। दीप प्रज्वलन में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इससे पहले सुबह पशुपतिनाथ स्थित बागमती नदी के तट पर विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का पाठ और पारायण भी किया गया। परराष्ट्र मंत्री शशीर खनाल और मालदीव के विदेश मंत्री इरुथिसाम एडम के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान एडम ने भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ से हुई जनधन की भारी क्षति पर मालदीव सरकार और जनता की ओर से दुख जताते हुए नेपाल के प्रति एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया। परराष्ट्र मंत्री खनाल ने मुश्किल समय में नेपाल के साथ खड़े होने के लिए मालदीव सरकार और जनता का आभार जताया। दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से जुड़े साझा चुनौतियों पर चर्चा की और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों के जरिए जलवायु न्याय को बढ़ावा देने के लिए समन्वय और सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इस साल अब तक 42,590 लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं जबकि 117 लोगों की मौत हो चुकी है। सितंबर में मामलों में अचानक बढ़ोतरी से अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत और 1,558 नए मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जो इस साल एक दिन में भर्ती होने वाले मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आने वाले हफ्तों में स्थिति और गंभीर होने की आशंका जताई है। डेंगू के साथ देश में पहले ही खसरे के प्रकोप से भी जूझ रहा है जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था पर दोहरा दबाव है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भोटेकोशी बाढ़ से प्रभावित नागरिकों को राज्य के साथ और भरोसे की जरूरत। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल का कथन। जलवायु न्याय सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से किया आह्वान। जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में खोज और बचाव अभियान जारी रहेगा नेपाली सेना का कथन। नागरिकों को राज्य की मौजूदगी की कमी महसूस न हो इस तरह राहत बचाव और पुनर्वास का काम आगे बढ़ाने का तीनों स्तर की सरकारों से सभामुख टोल प्रसाद अर्याल का आग्रह। और बांग्लादेश में तेजी से बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। अब तक 117 लोगों की हो चुकी है मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार। शुभ रात्रि।